वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीर्येत् शन्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः तदीयन्तस्तहि अभद्राणि वेदनोति सुवृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 19। द्वैपायनः भगवान अप्रबोधात् बुद्धतु पाखंडगन प्रमादात् कल्केहे कलहे कालमालात् प्रपातु धर्म अवनाय उरु कृतावतारः। द्वैपायनः भगवान प्रबोधात् बुद्ध पाखंडगन प्रमादात् कल्के हे कले कालमलात् प्रपातु धर्मवनाय उरु कृतावतारः। द्वैपायनः भगवान् प्रबोधात् बुद्धः पाखण्डगन् प्रमादात् कल्के कले कालमलात् प्रपातु धर्मवनाय उरु कृतावतारः। द्वैपायनः भगवान् प्रबोधात् बुद्ध पाखण्डगन् प्रमादात् कल्के कले कालमलात् प्रपातु धर्मवनाय उरु कृतावतारः। द्वैपायनः वैदिक ज्ञान के दाता श्री व्यासदेव भगवान श्री भगवान का सर्वशक्तिमान अवतार अप्रबोधात शास्त्र के अज्ञान से बुद्ध हत्तु तथा भगवान बुद्ध पाखंडगण अबोध व्यक्तियों में माया जाल फैलाने वाले नास्तिकों का प्रमादात पागलपन से कल्कि केशव के अवतार भगवान कल्कि कले है इस कलयुग के काल मलात इस युग के अंधकार से प्रपातु रक्षा करें धर्म अवनाय धर्म की रक्षा हेतु उरु महान कृतावतार जिसने अवतार ग्रहण किया। इसके अनुवाद में श्री प्रभुपाद लिखते हैं श्री प्रभुपाद की मेरे वेद ज्ञान से विहीन होने के कारण श्री भगवान के अवतार व्यासदेव मेरी सभी प्रकार की अविद्या से रक्षा करें वेद विरुद्ध कर्मों से तथा आलस्य से जिसके कारण प्रमादवश वेद ज्ञान तथा अनुष्ठान भूल जाते हैं भगवान बुद्ध देव मुझे बचाएं। श्री भगवान कल्कि देव जिनका अवतार धार्मिक नियमों की रक्षा के लिए हुआ है मुझे कलयुग की मलिनता से बचाएं। इसका तात्पर्य पढ़ता हूं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। इस श्लोक में श्री भगवान के विभिन्न अवतारों का उल्लेख हुआ है जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रकट होते हैं। महामुनि श्रील व्यासदेव ने समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए वेदों की रचना की। यदि कोई इस कली काल में भी अविद्या के बंधन से बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि श्रील व्यासदेव की रचनाएं पढ़े। इनके नाम हैं चारों वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद तथा अथर्ववेद, 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र अर्थात ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत, महापुराण, ब्रह्मसूत्र पर व्यासदेव जी का भाष्य तथा अन्य 17 पुराण। श्री व्यासदेव की कृपा से ही दिव्य ज्ञान की इतनी कृतियां हैं जिनसे हम अपने को अविद्या के चंगुल से बचा सकते हैं। जैसा कि श्रील जयदेव गोस्वामी ने अपने दशावतार स्तोत्र में बताया है कि भगवान बुद्ध ने वैदिक ज्ञान की निंदा की। निंदसी यज्ञ विद्रेह क्षति जातम सदैव हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। भगवान बुद्ध का उद्देश्य जनता को पशुवध के कुकृत्य से बचाकर वृथा ही पशुओं की हत्या को कम करना था। जब पाखंडी लोग वैदिक यज्ञों के बहाने पशुओं का वध कर रहे थे तो भगवान बुद्ध ने कहा, यदि वेद पशुवध की आज्ञा देते हैं तो मैं वैदिक नियमों को नहीं मानता। इस प्रकार उन्होंने उन लोगों की रक्षा करी जो वैदिक नियमों का पालन कर रहे थे। अतः मनुष्यों को चाहिए कि भगवान बुद्ध की शरण में जाएं जिससे कि वे वैदिक आज्ञाओं का दुरुपयोग न करें। कल्कि अवतार हिंस्त्र अवतार है जो कलयुग में उत्पन्न नास्तिकों के विनाश के लिए है। जब कलयुग के इस प्रारंभ काल में अनेक अधर्म व्याप्त हैं और जो जो कलयुग आगे बढ़ेगा अनेकानेक छद्म धर्मों का प्रवेश होता जाएगा और लोग भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए उन असली धार्मिक नियमों को भूलते जाएंगे जिन्हें उन्होंने कलयुग के प्रारंभ में होने के पूर्व ही कहा था। ये नियम थे भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण। यहां तक अधिकांश ऐसे व्यक्ति भी जो अपने को वैदिक धर्म का पालन करने वाला बताते हैं वे वैदिक नियमों के विरोधी हैं। आए दिन वे नए नए धर्मों को गढ़ते रहते हैं और कहते रहते हैं कि मुक्ति का मार्ग यही है। नास्तिक मनुष्य कहते हैं यत मत तत पथ। इनके अनुसार मनुष्य समाज में सैकड़ों हजारों मत मतांतर हैं जिनमें से प्रत्येक वैध है। दुष्टों की इस विचारधारा से वेद वर्णित धार्मिक नियमों की हत्या हो गई है। जो जो कलयुग आगे बढ़ता जाएगा ऐसी विचारधाराएं और बलवती होती जाएंगी। कलयुग के अंतिम चरण में केशव का सबसे हिंस अवतार कल्कि देव के रूप में होगा, जो समस्त नास्तिकों का वध करके भगवान के भक्तों की रक्षा करेगा। ओम ज्ञानतिमिरंध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोवीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदांतिकम। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरून वैष्णवाश्च श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साधवेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकलकर्युभयश्च कृपा सिंधुभयविच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु बालाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। द्वैपायन का अर्थ क्या है जी? क्यों कहा उनको द्वैपायना के नाम से? व्यास देव जी को इस नाम से क्यों पुकारा गया? व्हाई इज कॉल्ड बाय दिस नेम? श्रील व्यासदेव का जन्म पराशर मुनि और सत्यवती के संयोग से हुआ था। सत्यवती को पाला गया था एक मछुआरे के द्वारा, क्योंकि वो मछलियां पकड़ने का कार्य करती थी अपने पिता मछुआरे के साथ, इसलिए उसके शरीर से मछली की बड़ी बदबू आती थी, बड़ी स्मेल आती थी। नाव खे रही थी तो एक बार जो है महर्षि पराशर वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुझे नाव से पार लगवा दो। तो जब सत्यवती ने उनको नाव के पार लगाया, पर इतनी सुंदर थी वो कि महर्षि पराशर उस पर मोहित हो गए और उससे जो है गंधर्व विवाह की याचना करने लगे। देखा मेरे शरीर से बहुत स्मेल आती है तो मैं आपसे संयोग कैसे कर पाऊंगी? तो महर्षि पराशर ने जो है उसकी दुर्गंध को सुगंध में बदल दिया, एवर सुगंधित रहेगी। और उनसे जो संयोग हुआ उससे जो है एक द्वीप के ऊपर, आइलैंड जिसे बोलते हैं, एक द्वीप के ऊपर जो है व्यास देव जी का प्राकट्य हुआ है, इसलिए द्वैपायन कहलाते हैं। द्वीप पे प्रकट हुआ है उनका। अब यहां चर्चा हो रही है कि वैदिक ज्ञान के दाता श्रील व्यास देव और नीचे जो है प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं कि यदि कोई इस कली काल में अविद्या के बंधन से बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि श्रील व्यास देव की रचनाएं पढ़े। आप लोगों को वेद पढ़ने आसान लगते हैं कि पुराण पढ़ने आसान लगते हैं? क्यों? कारण संस्कृत भाषा दो टाइप की है, एक है वैदिक संस्कृत, टफ है, दूसरी है लौकिक संस्कृत जो कि आसान है। वैदिक संस्कृत में रचना हुई है वेदों की, उपनिषदों की, और लौकिक संस्कृत में रचना हुई है पुराणों की, महाभारत की, वाल्मीकि रामायण की, इन शास्त्रों की। वैदिक संस्कृत में जो वेदों की रचना हुई है, जो उपनिषदों की रचना हुई है, उनको पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, वेदांग शिक्षा, जिसको प्रोनंसिएशन कहते हैं, कल्प मतलब सैक्रिफाइशियल प्रोसीजर, यज्ञ कैसे किया जाता है, ये सारा त्याग कैसे किया जाता है, इस प्रोसीजर्स की, ग्रामर के रूल्स, व्याकरण, निरुक्ति और ज्योतिष और छंद। जब इन बेसिक्स की चर्चा कर लेते हैं, इनका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद वेदों को समझने में आसानी हो जाती है। वेदों में जो वर्णित श्लोक हैं, एक शब्द से लेके 58 शब्दों तक के हैं, 58। भगवद गीता के एक श्लोक में कितने शब्द हैं, कितने कितने अक्षर यूज हो रहे हैं, कहीं 32 हैं और कहीं 33 हैं, पर मेजॉरिटी जो है 32 की है। यहां 58 अक्षर नहीं, 58 शब्द हैं। सोचो कि एक एक श्लोक कितना लंबा रहा होगा, सो बिग। इनको पढ़ने के लिए, इनको समझने के लिए बहुत ही समय चाहिए, नंबर एक, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, नंबर दो, और जो भी टीचिंग्स हैं उनको याद नहीं रखेंगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा, इसलिए बहुत ही शार्प मेमोरी चाहिए, तब जाके वेद समझ में आते हैं। जब वेदों को, उपनिषदों को पढ़ाया जाता था, तब लिखने की व्यवस्था नहीं थी, लिखित रूप में इस तरीके से हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी के पास कॉपी है, पेन है, बॉल पॉइंट है, जेल पेन है, वगैरह वगैरह, ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी। तब जो है सुनने के बाद ज्ञान की प्राप्ति को अपने अंदर समाहित करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस्तेमाल होती थी वो थी मेमोरी। सुनते थे श्रुति और मेमोराइज कर लिया। आज का जो एटमॉस्फेयर है, आज जो हमारा भौतिक संघर्ष है, सांसारिक संघर्ष है, यहां सुनने के बाद बाहर निकलते ही यहां की चीज भूल जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आज जो जो पढ़ाया गया है उसके मुख्य पॉइंट्स हाईलाइट कर दीजिएगा, तो आप बाहर आके नहीं बता सकते। याद करेंगे, अच्छा पहले क्या कहा था, फिर क्या कहा था, फिर क्या कहा था। मुझे आज तक याद है, मैं जब बेलगाम जाया करता था तो वहां उनका एक प्रोसीजर था। भागवतम क्लास जैसे ही खत्म हुई तो सबके सब भक्त जो हैं गोला बना के बैठ गए, और गोला बना के उस दिन की जो मुख्य पॉइंट्स थे उसकी चर्चा हो रही है, डिस्कशन नहीं हो रहा, एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, पर सिर्फ उनको हाईलाइट किया जा रहा है, ये हुई, दूसरे ने दूसरा बताया, तीसरे ने तीसरा बताया, चौथे ने चौथा बताया। जब पांचवें की बारी आई तो उसने पहला वाला सोच रखा तो पहले ही बताया जा चुका है, एक और सोचा हुआ था तीसरे ने बता दिया, अब वो फंस गया, मैं क्या बताऊं। तो बड़ी शार्प कंसंट्रेशन और शार्प मेमोरी चाहिए थी कथा सुनते हुए, वो आज के युग में हमें उपलब्ध नहीं। या बैठे बैठे भी घर का ख्याल आता है, वहां क्या हो रहा होगा, नौकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चा स्कूल गया है कि नहीं गया है, ऑफिस में ठीक से पैक हुआ खाना कि नहीं पैक हुआ, वगैरह सो मेनी थिंग्स। इतनी बातें जो है यहां बैठ के याद आती हैं कि कथा के सिवाय सब बातें याद आ रही, कथा कम और बातें ज्यादा। अब वेदों के अंदर जो मुश्किल वाले उपनिषद हैं, जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, आरण्यक उपनिषद जितने हैं, इन सबको जो है समझना बड़ा ही कठिन है। आप ट्राई करके देखिएगा, इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल है। उपनिषदों को वेदों का अंत कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। क्योंकि फाइनल ऐसी चीजें बता दी हैं उपनिषद के अंदर कि सारे के सारे वेदों का निचोड़ निकाल के उसके अंदर दे दिया गया। इन्हीं उपनिषदों के जो श्लोक हैं उनको इकट्ठा बांध के एक एक उपनिषद को एक एक सूत्र में बांध दिया है, इसको कि वेदांत सूत्र के नाम से पुकारा जाता है। अब प्रश्न ये है कि आपको वेद में चार हिस्से हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इनको समझने में आपको वैदिक संस्कृति चाहिए, वैदिक संस्कृत चाहिए। अब भगवान ये कहते हैं कि आने वाला कलयुग, आने वाले संसार में लोगों को थोड़ा सा आसान कार्य कर दिया जाए। आजकल आती है ना, मैथमेटिक्स मेड इजी, फिजिक्स मेड इजी, विंडोज मेड इजी, इस तरह के मतलब बहुत सारी बुक्स आती हैं मेड इजी गाइड्स जो आपको जो है सारे सब्जेक्ट को बड़े आसानी से समझा देती है। तो उस मेड इजी करने के लिए एक लौकिक संस्कृत के अंदर वेद व्यास जी के माध्यम से पुराणों की और इतिहास की रचना हुई। अब कलयुग के अंदर क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, परंतु उस समय जो द्विज बंधु थे उनको भी शूद्र के नाम से पुकारा गया था। उनके लिए भी जो है वेदों का अध्ययन काफी कठिन था, इसलिए उनके लिए जो है पुराणों की और इतिहास की रचना की गई। और चूंकि कलयुग के अंदर सारे ही शूद्र हैं, इसलिए पुराणों की और इतिहास की रचना जो है उनके लिए बड़ी ही आसान और सरल उपाय है भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के। पुराण का अर्थ होता है पुरातन, पुरातन का मतलब है ओल्ड स्क्रिप्चर्स, पुराने इतिहास हैं ये। ये वैदिक ज्ञान देते हैं कहानी के रूप में, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स, कहानियां, इनको देते हुए भगवान की सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज को हाईलाइट करते हैं, जिससे आपको जो है भगवान का पूर्ण ज्ञान और उनकी इनकार्नेशन, मत्स्य अवतार हो गया मछली के रूप में भगवान ने, कूर्मा अवतार हो गया कछुए की पीठ के ऊपर, मंदराचल पर्वत कितना ऊंचा कितना लंबा चौड़ा है उसका जो है अपना मंथन हो रहा है। तो ये सारी सुपर ह्यूमन है, हम इसे इमेजिन नहीं कर सकते। वराह रूप धारण किया तो पल भर के अंदर जो है वो आकाश को छूने लगा। दीज थिंग्स आर सुपर ह्यूमन। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं हमको पुराणों में उल्लिखित मिलती हैं, पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है। शास्त्र के अंदर पुराणों को उपनिषदों का मैच्योर्ड फॉर्म कही गई है। मैच्योर्ड गिनती क्या होती है? परिपक्व, मतलब उपनिषदों का परिपक्व फॉर्म जो है वो परिपक्व रूप जो है वो पुराण है। पुराणों को हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनको संकलित करके उसमें इनको जो है अंतिम रूप से पंचम वेद का नाम दिया गया है, या फिफ्थ वेदा। इतिहास पुराणा पंचम वेदा नाम वेदा, एक औथवीं छांदोग्य उपनिषद के सातवें खंड के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में इसका वर्णन मिलता है कि पुराण और महाभारत जो इतिहास हैं इनको पंचम वेद कह के पुकारा गया है। जो लोग ब्राह्मण नहीं थे, जो वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते थे, उनके लिए, जिनमें कि दूसरे वर्णों के लोग प्लस स्त्रियां, उनके लिए जो है रचना की गई है महाभारत और वाल्मीकि रामायण और पुराणों की, जिससे वे कथाएं पढ़कर कथाओं से आनंद प्राप्त करके भगवान के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त कर सके। अब प्रश्न आता है इसके बाद कि भगवान जो है स्वयं वेदों के अंदर, रामायण के अंदर, पुराणों के अंदर, महाभारत के अंदर ग्लोरीफाई होते हैं। आप कहीं भी ले लीजिएगा, आपको अल्टीमेट ग्लोरिफिकेशन जो है भगवान हरि अर्थात भगवान कृष्ण का ही मिलेगा, परंतु दूसरों का भी ग्लोरिफिकेशन हुआ है तो ये कंफ्यूजन आम तौर पे लोगों के दिमाग में रहता है। शिव पुराण में शिवजी ग्लोरीफाई हो रहे हैं, देवी भागवत पुराण में देवी ग्लोरीफाई हो रही हैं, ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मा जी ग्लोरीफाई हो रहे हैं, वगैरह 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 बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं। पुराणों के अंदर थे 100 करोड़ श्लोक, 100 करोड़, जो लुप्त होते होते आज हमारे पास सिर्फ 4 लाख श्लोक उपलब्ध हैं, 4 लाख। कुछ दूसरे लोगों में हैं, असंख्य ब्रह्मांड हैं, जगह जगह ब्रह्मांड में अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग गिनती है, अलग अलग क्वांटिटी है श्लोकों की। तो मत्स्य भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी है उस वक्त उन्होंने सबसे पहले पुराणों को स्मरण किया है, और पुराणों को स्मरण करने के बाद उनके मुख से जो है वेद उद्भूत हुए। रचना सबसे पहले पुराणों की हुई है। 100 करोड़ श्लोकों वाले पुराणों में विस्तृत पुण्यप्रद त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम इनकी चर्चा हुई है। भगवान कहते हैं कि मैंने हयग्रीव के रूप में, हयग्रीव मतलब जो भगवान की हॉर्स फॉर्म, जो घोड़े की फॉर्म थी, उसके अंदर जो है मैंने घूम घूम कर सारे यूनिवर्सेस से इन पुराणों का संग्रहण किया है, और कल्प के अंदर जो है जब एक आर्णव हुआ है तो मैंने मत्स्य फॉर्म के अंदर इनको जो है निकाल के ब्रह्मा जी को दिया है, ब्रह्मा जी ने इसको फिर जो है ऋषि मुनि और देवताओं को एक्सप्लेन किया। और जब लोग इन पुराणों को भूल जाते हैं, इनका ज्ञान लुप्त हो जाता है, तब मैं स्वयं अपने आप को प्रत्येक द्वापर युग के अंदर व्यास देव के रूप में अवतीर्ण करता हूं और फिर इनका पुनः संकलन करता हूं। अब प्रश्न यह है कि पुराण 18 हैं जिनको महापुराण कहते हैं, 18 उपपुराण हैं और बहुत सारे स्थल पुराण हैं, अलग अलग जगह पर आपको पुराणों की रचना लोकल लेवल्स के हिसाब से मिलेगी। अब जो प्रश्न आया था कि कुछ लोग जो है कहते हैं इसमें उसको ग्लोरीफाई किया गया है, इसमें उसको ग्लोरीफाई किया गया है, अलग अलग ग्लोरीफिकेशन है, तो ऐसा क्यों है? तो मत्स्य पुराण में ही चर्चा आती है कि 18 पुराण में जिसमें 4 लाख श्लोक हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है, सात्विक पुराण, राशिक पुराण और तामसिक पुराण। सात्विक पुराणों में है अमल पुराण श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, ये सारे के सारे जो है भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं। राशिक पुराणों में है ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण और वामन पुराण, जिसमें कि ब्रह्मा जी का प्रेज है, ब्रह्मा जी को ग्लोरीफाई किया गया है। और तामसिक पुराण है मोड ऑफ इग्नोरेंस में, तो शिव पुराण है, स्कंद पुराण है, लिंग पुराण है, अग्नि पुराण है, कूर्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, जिसमें शिव दुर्गा और अग्नि के ग्लोरिफिकेशन किया गया है। सात्विक पुराण जो है उनको सबसे ऊपर माना गया है, सत्वगुण सबसे ऊपर होता है, इसलिए सात्विक पुराणों को सबसे ऊपर माना गया है कि वो आपको आपके लाइफ का गोल एक्सप्लेन करते हैं, वो आपको संबंध अभिधेय और प्रयोजन इन तीनों का ज्ञान देते हैं कि आपका भगवान से क्या संबंध है। अभिधेय का मतलब है उस संबंध को निभाना कैसे है, और प्रयोजन का मतलब है संबंध और अभिधेय को क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। अब प्रश्न आता है भागवत पुराण जिसको हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, इसके बारे में उल्लिखित है कि जो वेदांत सूत्र है जब उपनिषदों को वेदांत सूत्र के रूप में संकलित कर दिया गया तब उसको एक्सप्लेन करना है। तो कंप्लीट नॉलेज, भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान का आरंभ होता है छांदोग्य उपनिषद से और समाप्ति होती है वेदांत सूत्र में, जिसकी नेचुरल कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम। वेदांत सूत्र के सूत्रों का व्याख्या जो है श्रीमद् भागवतम में की गई है। 18,000 श्लोकों में आपको बताया गया है कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस, इसका ज्ञान दिया गया है भागवत वर्ष में। भागवतम का जो पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक, गायत्री मंत्र उसमें इंक्लूड किया गया है। वेदांत सूत्र के अंदर भी गायत्री मंत्र है, तो इस गायत्री मंत्र को जब स्टार्ट किया गया है तो व्यास देव जी ने अनऑथराइज्ड कमेंट्रीज ना हो इसलिए जो है गायत्री मंत्र को सबसे प्रथम इसके अंदर रखा है। परंतु उसके बावजूद आज कलयुग के अंदर बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने सिस्टम से भगवद गीता की और भागवतम की व्याख्या करते हैं। इन्हीं के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि नए नए धर्मों को गढ़ते रहते हैं और कहते रहते हैं मुक्ति का मार्ग यही है। मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है, क्योंकि अब आप मेरे फॉलोअर हो और इसी को फैलाओ। आज समाज में देख लीजिएगा, टीवी के ऊपर देख लीजिएगा, जगह जगह बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए हैं, बड़े बड़े जो है लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। कि मैं जो कह रहा हूं वो फाइनल है, शास्त्र में उसका उल्लेख मिले या न मिले, इमेटेरियल। मेरा कहना जो है वो फॉलो करने योग्य है, दिस इज व्हाट आई से। और यही बात जो है भगवान ने बहुत पहले कह दी। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंदर जो है कहा गया है कि भागवत पुराण बेस्ट है भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए। उसकी एक एक वाक्य जो है भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करता। स्कंद पुराण के विष्णुखंड के अंदर कहा गया है कि आपको पुस्तकों का संग्रहण करने की क्या लाभ, क्या आवश्यकता, अगर आपने श्रीमद् भागवतम को संग्रहित नहीं किया, अपने पास नहीं रखा, उसको नहीं पढ़ा, उसको नहीं समझा और उसको जीवन में नहीं लगाया। शंकराचार्य ने भी गोविंदाष्टकम के अंदर जो है ग्लोरीफाई किया गया है कि भगवान कृष्ण की भक्ति सर्वोच्च है और सर्वोच्च भक्ति को प्राप्त करने का एक ही साधन है, वो है भागवत पुराण, अर्थात श्रीमद् भागवतम, और इसके अलावा कुछ नहीं। जब हम सात्विक पुराणों की चर्चा करते हैं तो इसके अंदर भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, विष्णु पुराण में 23,000 हैं, पद्म पुराण के अंदर 55,000 श्लोक हैं, वराह पुराण में 24,000, नारदीय पुराण में 25,000 और गरुड़ पुराण में 19,000। जब राशिक पुराणों की चर्चा करते हैं तो ब्रह्म पुराण में 13,000 है, ब्रह्मवर्त पुराण में 18,000, ब्रह्मांड पुराण में 12,200, मार्कंडेय पुराण में 9,000, भविष्य पुराण में 14,500, वामन पुराण में 10,000। एक 18,000 की संख्या है, क्यों है ये बताऊंगा आपको मैं। शिव पुराण के अंदर 24,000, स्कंद पुराण में 81,100, लिंग पुराण में 11,000, अग्नि पुराण में 16,000, अरे कूर्म पुराण में 18,000 है, मत्स्य पुराण में 14,000। इसके अलावा जो उप पुराण है उनमें मुख्य है नरसिंह पुराण, नंदी पुराण, साम पुराण, आदित्य पुराण। अभी 18 की संख्या जो आई है श्रीमद् भागवतम के अंदर, 18,000, इसकी मुख्य रूप से क्या सिग्निफिकेंस है? 18,000 ही श्लोक हैं उसके अंदर, 18,200 नहीं, 19,000 नहीं, 17,000 नहीं, 14,000 नहीं, 22,000 नहीं, 18,000 ही है। क्यों, किस लिए? आज की डेट में अगर आप न्यूमरोलॉजी देखेंगे तो न्यूमरोलॉजी के अंदर टोटल जो उसमें न्यूमेरिकल्स हैं उनको ऐड किया जाता है, तो 18,000 में एक जमा आठ जमा जीरो जमा जीरो जमा जीरो कितने हुए? नौ। संख्या निकलती है नौ की। जब आप अल्फाबेट्स लेते हो तो अल्फाबेट्स में जो बेसिक अल्फाबेट्स है इंटीजर कहा जाए, इंटीजर कहते हैं ना इसको मैथमेटिक्स में, क्या कहते हैं टीचर्स? जीरो से नौ तक, और बाकी सब संख्याएं जो हैं वो एक दो एक तीन बारह तेरह ग्यारह सब मतलब दोनों को जोड़ के बनती हैं। जीरो से लेकर नौ तक की काउंटिंग की जाती है और नौ जो है उसमें हाईएस्ट है। नौ हाईएस्ट की क्वालिटी क्या है? आप कोई भी एक संख्या ले लीजिएगा, चौदह, चार और एक चौदह और नौ तेईस, तीन और दो तेईस और नौ बत्तीस, तीन और दो बत्तीस और नौ इकतालीस, चार और एक। अब कोई संख्या ले लीजिए, आप कहीं से बिगनिंग कर लीजिए, सत्रह, सात और एक सत्रह, नौ छब्बीस, छह और दो छब्बीस और नौ पैंतीस, पांच और तीन आठ। नौ की संख्या जो है पूर्ण संख्या कहलाती है, इट्स कंप्लीट। भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, 18 की संख्या आ रही है। भगवत गीता में 18 चैप्टर हैं, 8 और 1 9। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, 8 और 1 माला में 108 मन के हैं, 8 और 1 9। भगवान कृष्ण की रानियां, मुख्य रानियां 108, 8 और 1 9। भगवान कृष्ण की मुख्य गोपियां 8 और 1 9। जब हम सखियों की चर्चा करते हैं, ललिता सखी, विशाखा सखी और नौवीं राधा रानी, भगवान का प्राकट्य हुआ आठवीं अष्टमी को, नंदोत्सव मनाया गया नौवीं को। भक्ति के अंदर कितने प्रोसेस हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नौ हो गए। नौ स्टेप हैं आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करते हैं श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और कृष्ण प्रेम, नौ सिस्टम। बच्चे का जन्म होता है नौ महीने के बाद। आपका पूरा जीवन नौ स्टेप्स में चलता है। पहले बीज बनता है, बीजों का मिलन होता है, उसके बाद प्राकट्य होता है, फिर बढ़ता है, पौगंड अवस्था आती है, किशोरावस्था आती है, युवावस्था आती है, अधेड़ा अवस्था आती है, बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु आती है। जब काउंट करेंगे तो नौ अवस्थाएं आती है, इट्स नाइन नाइन टाइप्स। इस तरह से आपको जो है नौ की संख्या का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है। जब आप चर्चा करते जाएंगे, एक के बाद एक बढ़ते जाएंगे, तो आपको बहुत सारी वस्तुएं मिलेंगी। भगवान राम का प्राकट्य किस दिन होने वाला है? नवरात्रे कितने होते हैं? निधियां कितनी हैं? नवनिधि, कभी आपको चर्चा करके बताएंगे कि नौ निधियां कौन सी हैं। हर जगह नौ का प्रयोग है। तो श्रीमद् भागवतम जो है उसके अंदर 18,000 श्लोक हैं। ये हर चीज को सिग्निफाई करता है। भगवद गीता के अंदर राज विद्या बिल्कुल मिडल में कौन सा अध्याय आता है? नौवां आता है। सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय जो है भक्ति योग का नौवां अध्याय। तो इस तरह जैसे जैसे आप जो है चर्चा करते चले जाएंगे, आपको नौ का महत्व प्राप्त होता चला जाएगा। तो यहां जो है भागवतम के अंदर 18,000 श्लोक हैं। पढ़ने के लिए कितना समय चाहिए? 18,000 श्लोकों को पढ़ने के लिए कितना समय चाहिए? नहीं पढ़ सकते प्रभु जी, 9 साल कम से कम चाहिए। आप ट्राई करके देखिए। हां, जबरदस्ती खींचना है तो चाहे तो हफ्ते भर में खत्म कर लो। सप्ताह करते हैं ना,
پڑھنے بیٹھ کے صبح سے لے کے رات تک 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا, پڑھتا پتا لگے ختم ہو گیا, سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا, پلے کچھ نہیں پڑا, بس ریڈنگ ہو گئی. تو یہاں پر جو ہے اس شلوک کے اندر چرچا ہو رہی ہے کہ یدی کوئی اویدیا کے بندھن سے بچنا چاہتا ہے تو اپربودھات بودھ ہونا, مطلب آپ کو گیان ہو جانا, آپ کو معلومات حاصل ہو جانی, آپ کو پتہ لگ جانا ہاں مجھے بودھ ہو گیا ہے, ایسا کرنا چاہیے. تو یو گیٹ نالج. وید کا ارتھ کیا ہے؟ وید شبد آیا ود سے, ود کا مطلب ہوتا ہے گیان, نالج. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور دیکھیں گے تو جرمن لینگویج, فرینچ لینگویج, انگلش لینگویج میں بہت سارے ورڈز ہیں جو سنسکرت سے نکلے ہیں, اور اسی میں ود کا مطلب ہے نالج. اور آج کی ڈیٹ میں نالج جو ہے پراپت کرانے کے لیے آپ کو چاہیے آڈیو ویژول, مطلب جہاں سنائی بھی دے اور دکھائی بھی دے, جس کو بلایا گیا ہے ویڈیو کے نام سے. تو ویڈیو شبد جو ہے ویڈ سے نکلا ہے, اور ویڈ کا مطلب ہوتا ہے گیان, اور گیان کا مطلب ہوتا ہے ویداز. یہ الگ بات ہے کہ آج کل ویڈیو کو مس یوز کیا جا رہا ہے, اس کا بھرنش کیا جا رہا ہے, غلط غلط ویڈیو تیار ہو رہے ہیں, بٹ بیسیکلی ویڈیو کا مطلب ہے گیان, وہ یتر, وہ انسٹرومینٹ, وہ پدارتھ جس کے دوارا آپ کو گیان کی پراپتی ہو رہی ہے. بٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. تو یہاں کہا جا رہا ہے ویاس دیو جی کی کرپا سے دیویہ گیان کی اتنی کرتیاں ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو اویدیا کے چنگل سے چھٹا سکتے ہیں. اب پرشن یہ ہے کہ ریڈنگ کیسے کرنی ہے. سویرے کھولا, لال کپڑے میں سے گرنتھ باہر نکالا, دو چار, ایک دو پیراگراف, ایک دو شلوک پڑھے, اس کے بعد بند کر دیا. کیا لکھا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا, پڑھ لیا, بس پڑھ لیا, سمجھ میں نہیں آیا. اسی تین چیزیں, ایک ان پڑھ ویکتی کے سامنے آپ بھگوت گیتا رکھ دیں گے تو بولیں گے بڑے کالا سا کیا ہوا, یہ سفید پنے کو کالا کر دیا, کالا ہے. تھوڑا سا گیانوان ہے تو اس میں دیکھے گا, ہاں اس میں دیکھو اس میں نا پیراگراف بھی ہیں, اس میں لائنیں بھی ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے, کچھ دکھائی دے رہا ہے, کچھ موٹا لکھا ہے, کچھ پتلا لکھا ہے. تھوڑا اور گیانوان ہوگا, تھوڑا اور نالجیبل ہوگا تو اس کو پڑھے گا, ہاں یہاں کچھ لکھا ہے میں پڑھ سکتا ہوں, کل کی اوتار ہنس اوتار ہے جو کلیوگ میں اتپن ناشتکوں کے وناش کے لیے ہے, وغیرہ وغیرہ, ایسے پڑھ لے گا. جو اور نالج فل ہے, جس کو اور گیان ہے, اس کے لیے کیا ہے کہ کل کی اوتار ہنس اوتار ہے. اچھا, ہنس کا مطلب ہوتا ہے جو کہ ہنسا کرتا ہے. ارے بھگوان ہنسا کرتے ہیں, یہ بڑا ڈاؤٹ ہے, مجھے اس کے بارے میں پوچھنا پڑے گا. مینس اس کے لیے بھگوت گیتا ہے جو گیان میں پریپکو ہو چکا ہے, ہی ول بی ایبل ٹو اینالائز. اور جب وہ یہ جانے گا, یہاں پر اس کے اندر پڑے گا کہ یہ نیم تھے بھگوان کے چرن کملوں میں آتم سمرپن, آتم سمرپن کیوں کرنا چاہیے, اس کا گیان پراپت کرے گا اور آتم سمرپن کے راستے پہ چل پڑے گا. مینس جیسے جیسے ویکتی کے پاس گیان کا پرکاش ہوتا جاتا ہے, ویسے ویسے گرنتھ جو ہے اس کو سمجھنے کی شکتی آتی جاتی ہے. بگننگ میں کالا دکھائی دیتا ہے, یہ تو کالا سا کیا ہوا سفید کاغذ کو, پر جیسے جیسے گیان پراپت ہوتا جائے گا وہ ایک ایک لائن کو پڑھے گا اور اسے اینالائز کرے گا. نہیں سمجھ میں آئے گا تو گیان دینے والے کسی مہاپرش کے پاس جائے گا, ان سے بولے گا مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ بھگوان کے چرنوں میں آتم سمرپن کیسے کرنا, مجھے سمجھائیے, کیونکہ یہ آتم سمرپن کر کے ہی میں اس بھوتک پرکرتی سے, بھوتک سنسار سے باہر نکل سکتا ہوں. یہ مجھے فارمولا ذرا اچھے طریقے سے بتائیے گا کہ بھوتک سنسار سے باہر کیوں نکلنا چاہیے, اس بھوتک سنسار میں کیوں نہیں رہنا چاہیے, اور بھگوان کے چرن کملوں میں سمرپن کیوں کرنا چاہیے. دین ہی انڈرسٹینڈس. اسی طرح جو ہے جب ہم اویدیا کا مطلب ہے کہ ہمیں گیان نہیں ہے کہ ہم اس بھوتک سنسار میں کیوں ہیں اور ہم یہاں کیوں بار بار بھٹک رہے ہیں اور ہمیں اگلا جنم ملے گا تو کہاں ملے گا, اس بھوتک سنسار سے نکلنے کا اپائے کیا ہے, یہ ہم کو گیان نہیں اس بات کا, یہ اویدیا ہے. جب ہمیں ان چیزوں کا گیان ہو جائے گا تو ودیا ہے. اسی ودیا کے بارے میں اویدیا اور ودیا کا بھید جو ہے بھگوان بتا رہے ہیں بھگوت گیتا کے 13ویں ادھیائے کے 8ویں سے 12ویں شلوک میں, کہ میں اسے گیان کہتا ہوں. तो मुख्य बात यह है कि इन श्लोकों के अंदर पुराणों को ग्लोरीफाई किया गया है, पर पुराणों को समझने के लिए आवश्यक यह है कि आप ये अवश्य समझें कि तामसिक पुराणों की रचना क्यों हुई और राजसिक पुराणों की रचना क्यों हुई। रचना तो हुई है, तीन वैरायटी के पुराण बनाए गए, पर रचना क्यों हुई इसका उत्तर मिलता है भगवद गीता के अंदर सातवें अध्याय के बीसवें और इक्कीसवें श्लोक में, जहां भगवान कहते हैं कि जिसकी जिस देवी देवता में श्रद्धा होती है मैं उसकी श्रद्धा को उस देवी देवता में स्थिर कर देता हूं। श्रद्धा स्वयं स्थिर नहीं हो रही, देवी देवता अपनी श्रद्धा स्थिर करवाने में सक्षम नहीं है, श्रद्धा स्थिर फिर भी भगवान के माध्यम से ही होती है, भगवान के द्वारा ही होती है। और श्रद्धा स्थिर कैसे हो रही है कि भगवान ने पुराणों की रचना करी कि अगर तेरी शिवजी में श्रद्धा है तो शिव पुराण पढ़, अग्नि में श्रद्धा है तो अग्नि पुराण पढ़, ब्रह्मा जी में श्रद्धा है तो ब्रह्मांड पुराण पढ़, मतलब मैं तेरे को तेरी श्रद्धा को फिक्स करने के लिए उसी के अनुरूप पुराण दे रहा हूं। बट उन पुराणों के अंदर भी अल्टीमेटली एंड के अंदर जो है विष्णु को ही स्थापित किया गया है, बिगिनिंग जरूर उनसे हुई है। तो इसलिए जो है भगवान स्पष्ट कहते हैं कि अगर आपको पुराणों को अध्ययन करना है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे जैसे पुराण पढ़ते गए वैसे वैसे श्रद्धा विचलित होती गई। श्रद्धा एक जगह फिक्स है, परंतु पुराणों से आपको पता लग जाता है कि हम इस भौतिक संसार में किस प्रकार रहना चाहिए और जो लोग रहते थे किस प्रकार रहते थे और उन्होंने रहने के बाद क्या प्राप्त किया और किस देवी देवता की पूजा अर्चना करने के बाद क्या प्राप्ति होती है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ज्ञान मिलता जाएगा, पर सारे पुराणों को पढ़ने के बजाय अगर आप एक पुराण पढ़ लें जिसके अंदर जो है सारे पुराणों का निचोड़ दे रखा है श्रीमद् भागवतम, तो आपको बाकियों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? शैल बहुवाद की